समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हमारा विषय है वेक्टर जनित रोगों के लक्षण, रोकथाम और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉ तनु जैन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ पुनीत मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
और इस कार्यक्रम में समूचे देश से हमारे श्रोता भाग ले सकते हैं और अब हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और दूसरे नंबर 2371716 और 2342105 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर धनु, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वेक्टर जनित रोग क्या होते हैं और किस तरह की बीमारियों को हम वेक्टर बोन डिजीज कह सकते हैं।
जी, तो वेक्टर जनित रोग ये होते हैं कि कोई एक किसी कीटाणु के द्वारा ये ट्रांसमिट किए जाते हैं, लेकिन इसको ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है, जैसे कि वो मच्छर हो सकता है या एक तरह की फ्लाइज हो सकती हैं जो मक्खियां होती हैं। तो ये वेक्टर हैं जो कि विषाणु या कोई कीटाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट को ट्रांसमिट करते हैं। तो उनको एक मीडियम चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है अपनी बीमारी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं और जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल है, जो कि एक अंग है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का, यहां पे हम 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में पूरा शोध करते हैं और उसको कंट्रोल के लिए हमारे यहां पे काम चलता है। तो उसमें से जो 5 हैं वो मच्छर से होती हैं और एक डिजीज जो होती है वो सैंडफ्लाई से होती है। तो ये 6 डिजीजेस के बारे में हम करते हैं, जिनके की नाम हैं, आप देखिए, मलेरिया जो आजकल कॉमन है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका भी आजकल चल रहा है, और इसके साथ साथ हमारा लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, काला आजार और जैपनीज एनकेफेलाइटिस जिसे दिमागी बुखार कहते हैं। तो इन सब के ऊपर हमारा ये इंस्टीट्यूट काम करता है।
तो ये डॉक्टर साहब, आपने जो बीमारियों की बात की है जिनके बारे में, डिजीज के बारे में आपने श्रोताओं को बताया है, इनके लक्षण किस तरह से नजर आते हैं अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो?
जी, तो ये सभी बीमारियों के थोड़े भिन्न लक्षण होते हैं। जैसे कि 3 बीमारियां हमारी हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज एनकेफेलाइटिस, ये वायरस होता है इसका मुख्य कारण और ये मच्छर के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया आपको पता है, एडीज मच्छर जिसे हम टाइगर मस्किटो भी कहते हैं, तो ये दिन में काटता है और ये बीमारी फैलाता है। और जैपनीज एनकेफेलाइटिस क्यूलेक्स से होती है, जो कि एक न्यूसेंस मस्किटो होता है, बहुत ज्यादा मच्छर होता है, ये क्यूलेक्स जो है उसे फैलाता है। मुख्यतः सारी ही बीमारियों में बुखार एक मेन कारण होता है। तो बुखार आता है, बुखार के साथ साथ बदन में दर्द होता है। किसी बीमारी में जैसे डेंगू है, उसमें थोड़े थोड़े कभी कभी शरीर में चकत्ते आते हैं, और डेंगू का खास लक्षण होता है कि आंखों के चारों तरफ आपको ज्यादा दर्द होता है। इसी तरह से अगर आप जैपनीज एनकेफेलाइटिस देखें तो उसमें शरीर में जो दिमाग के में वो असर करता है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे देखने को मिलते हैं। मलेरिया भी बुखार से ही शुरू होता है। तो मूलतः ये सारी बीमारियां बुखार से, अचानक बुखार आ जाने से शुरू होती हैं, इसी के साथ साथ बदन दर्द होता है। लेकिन ये बहुत कॉमनली वायरस, जो आजकल वायरल डिजीजेस चल रही हैं, उनको भी मिमिक करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है डिफ्रेंशिएट करना कि ये वायरस से है या वेक्टर बॉर्न डिजीज है।
बिल्कुल। और इस बीच पटना बिहार से हमारे साथ हमारे पहले आज के श्रोता जुड़ चुके हैं, शिवम। शिवम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
हेलो
जी, प्रश्न पूछिए।
देखिए, डेंगू का बीमारी से बचाव कैसे किया जाता है, और जिससे डेंगू हो जाए उससे कौन सा सावधानी बरतना चाहिए?
जी डॉक्टर पुनीत,
देखिए आपके 2 सवाल हैं। पहला कि डेंगू से बचाव कैसे किया जाता है। तो डेंगू से बचाव करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि डेंगू फैलता कैसा है। जो डेंगू है एक मच्छर के द्वारा ये बीमारी फैलती है, और जैसे कि अभी डॉक्टर तनु ने बताया कि जो टाइगर मॉस्किटो है, एडीज है, उसके द्वारा ये जो बीमारी है ये फैलती है, उसके काटने से इस बीमारी को होते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस मच्छर की जो काटने की हैबिट है, किस समय काटता है, दिन में काटता है, रात में काटता है, सुबह शाम काटता है। तो ये जो एक मच्छर है मेनली सुबह के समय और जो शाम का वक्त होता है उसमें काटता है और दिन के समय एक्टिव रहता है ये वाला मच्छर जो है। तो हमें एक तो ये देखना है कि हमें पूरी आस्तीन के जिसमें डेंगू का सीजन चल रहा है पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, शर्ट पहननी है, अधिक से अधिक तो बॉडी पार्ट है वो हमारा ढका होना चाहिए। ये पर्सनल प्रोटेक्शन हो गया अपने लेवल पे, या कोई ऐसी क्रीम कोई लगानी है जिससे मच्छर दूर रहे। दूसरी बात यह है कि हम मच्छर को कैसे कंट्रोल करें। हम ये जो डेंगू का मच्छर है जहां पे भी आप होंगे जहां ये ब्रीड करता है उससे करीब 100 से 150 मीटर के रेडियस में ही इसका जो रेंज होता है उड़ने का वो रहता है और प्रभाव रहता है अधिकांश जो केस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आप रह रहे हैं उसके आसपास ही कहीं पर ये ब्रीड कर रहा है। तो ब्रीड कर रहा है तो ये ब्रीड कहां करता है, ये जो पानी आपका कहीं ठहर जाता रुका जैसे किसी बर्तन में बरसात का पानी रह गया या छत पे पुराना टायर पड़ा हुआ है या कोई गमला रखा हुआ उसके अंदर छोटा सा पानी इकट्ठा हो गया है, गमले के नीचे प्लेट है या इस तरीके की कोई भी चीज टूटे हुए बर्तन है, कोई पत्थर के कहीं पिट बनी हुई है उसमें है, तो इन सारी जगह ये मच्छर जो है ये ब्रीड कर सकता है। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि ऐसी कोई जगह ना हो जहां पर पानी इकट्ठा हो पाए। उसके अलावा कूलर जो लोगों के घर में होते हैं उसमें ये मॉस्किटो ब्रीड करता है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि सप्ताह में एक दिन पानी अवश्य बदल दें, और अगर आप नहीं बदल सकते हैं तो उसके लिए या तो उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डालें अगर किसी ऐसी जगह है ताकि जो मच्छर के लार्वा है वो मर जाएं।
और हमारे अगले श्रोता है राजस्थान से जो बाबू खान है इनका नाम, नागौर जिले से ये हमसे बात कर रहे हैं। बाबू जी,
नया जिला हमारा डिजोना है।
जी जी, प्रश्न पूछिए।
हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये जो बीमारी है इनका इलाज का पता कैसे चलता रही है, इनकी जांच कहाँ कहाँ होती है?
जी डॉक्टर
जी, तो जैसा अभी चल रहा था डेंगू के ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि डेंगू कैसे कहाँ कहाँ पनप सकते हैं मच्छर और किस तरह ब्रीड करते हैं, तो अगर किसी को डेंगू होता है तो ये जो एडीज मच्छर है जैसे दिन के वक्त काटता है तो ये एक सिंगल मस्किटो बाइट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि एक मच्छर के काटने से ये आपको डेंगू हो सकता है, तो बहुत ही एक इफेक्टिव ये वेक्टर है। तो आपको बचाव तो करना ही करना है, और जैसे ही आपको बुखार आता है और मांसपेशियों में दर्द होता है या आंखों के चारों तरफ दर्द है या शरीर पे चकत्ते नजर आते हैं तो डेंगू का टेस्ट जरूर कराएं अस्पताल में जाके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है टेस्ट, और आप कहीं भी इसको टेस्ट करा सकते हैं। और अगर आपको डेंगू पॉजिटिव आता है तो कभी भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, सिंपल पैरासिटामोल की टैबलेट आती है वही खानी है और कोई दवाई नहीं खानी है बिना डॉक्टर के परामर्श के। और जो ये एक भ्रांति है बहुत ज्यादा है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं और लोग हॉस्पिटल भागना शुरू कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी सरकार ने हाल ही में डेंगू की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरह से रिव्यू करके नई गाइडलाइंस बनाई है जिसमें डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की गई है। और हमारे यहां बताने वाली बात यह है कि सन 2000 तक लगभग 3.3% हमारी मोर्टैलिटी थी, यानी 100 में से 3 से 4 लोगों की डेथ होती थी डेंगू से, जो कि आज 0.1% या 0.12% पहुंच गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अच्छे से पानी पिए और अपने बुखार को बस पैरासिटामोल से ठीक करें, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन का फॉलो करें। लेकिन हाँ, अगर बहुत मतली होती है, पेट में दर्द होता है, अच्छा फील नहीं होता बुखार ठीक होने के बाद भी, तो जरूर अस्पताल जाएं क्योंकि फिर उसमें देर नहीं करनी चाहिए। ये वायरल बुखार है, 3 से 4-5 दिन तक उतर जाता है और वायरस रहता नहीं है बदन में, लेकिन ये कुछ ऐसे लक्षण छोड़ जाता है जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको 5 दिन बाद भी अच्छा नहीं फील हो रहा है तो आप जरूर अस्पताल में जाके दिखाएं।
ओडिशा से हमारे अगले श्रोता है पदम लोचन जी। पदम जी, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ
जी,
जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है वो तो बहुत सीरियस डिजीज होता है।
आप प्लीज अपना रेडियो ऑफ कर लें।
जी
जी, पूछिए।
जो अभी हमारा जो मेडिकल साइंस जो साइंस डेवलप किया है उसको वैक्सीन बनाने के लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो इंडिया में जो मेडिकल साइंस रिसर्च होता है
जी,
उनके लिए वैक्सीन बनाना चाहिए।
जी बिल्कुल, डॉक्टर पुनीत ये बात कर रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज, इनके लिए टीका उपलब्ध होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए।
जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस पे कुछ मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो इसमें कई सारे बीमारियां सम्मिलित हैं, तो चलिए हम अभी दो बीमारियों की बात कर लेते हैं जो इंडिया में बहुत चर्चा में आती है। एक मलेरिया की बीमारी की बात आती है और एक डेंगू की बात आती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका टीके के लिए कोशिश नहीं की जा रही है, मलेरिया के टीके के बहुत सालों से कोशिश की जा रही है, और अभी एक टीका आया है जो कि अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में लगाया भी जा रहा है बच्चों में, और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं हम डेंगू के ऊपर। जहां डेंगू की बात है, इसके भी कुछ जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो गए हैं और कुछ जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वहां पे इसका परीक्षण भी हुआ है और अभी भारत में इस एक नया टीका है उसका परीक्षण जो है फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भारत में भी डेंगू के वैक्सीन का स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद ये करते हैं कि बहुत ही जल्दी भारत में भी डेंगू का जो एक है वैक्सीन आएगा, तो इसके ऊपर कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि आपका शायद यही सवाल था कि इसमें कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये सूचना देना।
डॉक्टर तनु, आप कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे?
तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मलेरिया की एक कारगर वैक्सीन आई है और इनफैक्ट हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो आया था कि आप ये वैक्सीन इंडिया में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी जरूरत नहीं है। पहले हमारी कंट्री में मलेरिया से बहुत डेथ्स होती थी, तो ये वैक्सीन एक्चुअली चाइल्डहुड मलेरिया में होती है ज्यादातर, और ये 5 साल से कम के बच्चों में जो फैल्सीपेरम मलेरिया होता है जिससे कि बुखार ज्यादा होता है और मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ पे लगभग 30 से 40 डेथ्स पर ईयर बच्चों के हो रही हैं, तो इसके लिए ये वैक्सीन हमारे लिए नहीं है। लेकिन अफ्रीका में क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं मलेरिया से, तो ये वैक्सीन हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही है लेकिन यूज अफ्रीका में हो रही है, तो ये तो हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हम देश को दवाई दे पा रहे हैं लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है वैक्सीन की। और डेंगू के लिए मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वैक्सीन तो जरूर आएगी जो 2-3 साल लगेंगे, लेकिन तब तक सब लोग अपना जन भागीदारी निभाएं और सफाई रखें।
और इस बीच मध्य प्रदेश से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपको और आदरणीय डॉक्टर साहब को
आभार आपका। प्रश्न पूछिए।
जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश हेमा बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि मच्छरों से होने वाली जो बीमारी है आमतौर पर जो मलेरिया है या डेंगू है, इसके उपरांत शारीरिक कमजोरी बहुत तेज आती है या सिर में दर्द होता है, तो कृपया इसका निराकरण बताइएगा।
जी डॉक्टर साहब।
जी देखिए, जहां तक बात आप कर रहे हैं कि बीमारी के बाद जो शारीरिक कमजोरी आती है, तो एक चीज है, सबसे पहले हमारे पास जो अगर बीमारी हुई है तो उसका इलाज होना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए, और अगर शरीर में बीमारी कमजोरी छोड़ के जाती है तो बहुत सारी बीमारियां कमजोरी छोड़ के जाती हैं, तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो हमें जो उचित खान पान है वो लेना है, हमें अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेशली उनको ठीक से लेते रहना, जो ताजे फल में मिलते हैं सब्जियों में मिलते हैं तो उनका भरपूर सेवन करना है। तो कुल मिला के ये कि अगर आप बीमारी से जिस समय रिकवर हो रहे होते हैं उस समय शरीर को कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो अपना जो आपका खान पान है, जो आपकी दिनचर्या है, उसको अगर आप ठीक रखेंगे और डॉक्टर की सलाह पे चलते रहेंगे कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ORS की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसे जो पेय पदार्थ है, नारियल का पानी है, लस्सी है, छाछ है, तो इन सब की आवश्यकता रहती है और इनके साथ साथ धीरे धीरे जो कमजोरी है वो ठीक हो जाती है।
दरभंगा बिहार से मोहन पासवान जी हमारे साथ में हैं। मोहन जी, आपका प्रश्न क्या है?
सर कथ्य प्रणाम।
जी प्रश्न पूछिए।
सर, मच्छर जीवाणु जनित रोग प्राकृतिक में अनगिनत है, सर इस जीवाणु जनित रोगों में से सबसे अधिक खतरनाक और जानलेवा रोग महारोग कौन कौन है सर, जिससे मनुष्य को बचने के उपाय करने की जरूरत अतिशीघ्र है सर? दूसरा है सर कि मच्छर के इस जीवाणु से सदृश अदृश दोनों रूप में ये जीवों का निर्माण करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, ये जीवन देने वाले जीवाणु सब संक्रमित होकर जीवन लेने वाले कीटाणु बन जाते हैं सर, इसे कैसे पहचाना एवं कैसे बचाया जा सकता है सर?
डॉक्टर तनु, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है इनका।
जी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से भी पूछा गया है, समझना भी मुझे पड़ा इसके सवाल को। तो जो आप कह रहे हैं कि ये जो भी वेक्टर जनित रोग हैं इसमें सबसे खतरनाक कौन है, पहला आपने ये पूछा, तो देखिए सबसे खतरनाक इस वक्त हमारे लिए, खतरनाक तो क्या ही कहेंगे, लेकिन डेंगू डेफिनेटली हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहता है क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो कि जानलेवा हो सकता है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मलेरिया का ट्रीटमेंट आजकल काफी अच्छा है तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस या सीरियस केसेस कम हो गए हैं और डेथ्स काफी कम हो गई हैं, और बाकी जो हमारी वेक्टर जनित बीमारी है जैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस है, इसमें अभी केस फैटेलिटी रेट यानी मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों चारों बीमारियां ही खतरनाक है। और दो और बीमारी जिसके बारे में मैं छोटा सा बताऊंगी, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जैसे हाथी पांव कहते हैं, या जो अंडकोश में सूजन आ जाती है इसकी वजह से, वो भी मच्छर के काटने से होती है। उसमें क्या है कि जो बचपन में इन्फेक्शन होता है वो जाके कहीं 20-25 साल में हाथी पांव बनना शुरू होता है। तो जिस इंसान को ये होता है उसे 30-40 साल उस बीमारी के साथ, या जब तक वो जीवित है, रहना पड़ता है। इसका कोई इलाज नहीं है, तो मरता तो नहीं है, डेथ तो नहीं होती, उस तरह से खतरनाक नहीं है, बट 30-40 साल अगर आप एक हाथी पांव के साथ या एक अपंगता के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम है। और काला आजार एक बहुत भयंकर बीमारी होती थी, और मैं ये बताना भी चाहूंगी कि उससे डेथ भी बहुत होती थी। उसको हम काला बुखार भी कहते थे, और ये स्पेशली जैसे बिहार से ये बोल रहे हैं तो बिहार में ज्यादा, बिहार और आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयासों से ये 2023 में हमने इसका एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया, उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और ये 3 साल हम सस्टेन करेंगे तो WHO हमको इसको सर्टिफाई करेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्व में कि हम लोग एक उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये खतरनाक बीमारियां इस तरह से हैं, और जो मच्छर हैं वो भी अपने जीने के लिए प्रयास करते हैं, और उसी के साथ जितने विषाणु और कीटाणु हैं वो सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो हर तरह से जीने की कोशिश करते हैं। हमें उन सबसे कैसे बचना है वही बताने के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है।
डॉक्टर तनु, एक प्रश्न मेरे मन में ये उभर कर आया कि पर्टिकुलर कुछ एरियाज होते हैं जहां पर इस तरह की बीमारी होती है, ये कहीं पर भी हो सकता है?
बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया काला आजार जो है ये एक बेल्ट है, तो ये वहां पे ज्यादा कॉमन है, और ये अब हमने इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और जैसे हाथी पांव है या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, वो 20 राज्यों में हमारे है, लेकिन डेंगू एक ऐसा है कि लद्दाख छोड़ के पूरे देश में है डेंगू और मलेरिया। तो ये अपनी अपनी जगह पर है, और ये डिपेंड करता है कि मच्छर की ब्रीडिंग की जो हैबिटेट्स हैं उनके हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
डॉक्टर पुनीत, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी बीमारियों से बचने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए, खानपान को किस तरह का रखना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और इन सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए लोगों की?
जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। जितनी वैक्टर जनित रोग हैं, सबसे पहली चीज तो ये है जरूरी कि वैक्टर को कंट्रोल किया जाए। और जैसे कि अभी डॉक्टर तनु ने बताया कि बिहार में जो एक कालाजार बीमारी होती थी उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया और एलिमिनेट कर देंगे, हम उस लक्ष्य पे चल रहे हैं कि अगर 3 साल तक नहीं होगी तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हर जगह के जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है किससे होता है, उनको अगर हमने कंट्रोल किया तो हम इन बीमारियों पे कर सकते हैं। जहां तक रही बात खान पान की और अपनी इम्यूनिटी की, देखिए किसी भी बीमारी के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो अगर बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए मलेरिया होता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो आपको सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डेंगू में हो सकते हैं, और चीजों में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए प्रतिरोधक क्षमता के लिए, एक तो अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, जो हमारा खान पान है वो बहुत जरूरी है, तो उसमें एक संतुलित हमें आहार लेना चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी रिच हमें डाइट लेनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो है अपना फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने की कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, साथ में योगा एंड मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को ही इम्प्रूव करता है।
और इस बीच आगरा से राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन पर। राजेश जी, आपका प्रश्न क्या है?
नमस्कार। डॉक्टर, हमें ये जानना था, अभी जैसे आप बता रहे थे कि पेट गिरने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं डेंगू बुखार में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम घर पर कैसे जानकारी कर सकते हैं कि हमारी प्लेटें अब धीरे धीरे कम हो रही हैं?
तो मैंने ये बताया आपको कि प्लेटलेट गिर सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट को हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि जैसे 1 लाख के अराउंड आ गया या 80,000 हो गया तो अब हमारे लिए परेशानी है। प्लेटलेट 20,000 तक भी आ जाते हैं तो जान के लिए कोई खतरा नहीं होता है। और यूजुअली जब आप डेंगू अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको समय समय पर बताएंगे कि कब जांच करानी है, पर ये नहीं है कि आप रोज जाके प्लेटलेट की जांच कराएं। डॉक्टर आपको सही टाइम पे गाइड करेंगे कि कब आपको जांच करानी है। कुछ ऐसे दिन होते हैं कि बुखार आने के या इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद डॉक्टर को पता होता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो वो आपको बता के भेजेंगे कि आपको क्या क्या डेंजर साइंस हैं। डेंजर साइंस ये हैं कि आपका बुखार भी कम हो गया, उसके बाद भी आपका जी घबरा रहा है, मतली हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये डेंजर साइंस हो सकते हैं। उस वक्त आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स के बारे में पेशेंट को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अननेसेसरी एक पैनिक क्रिएट करते हैं। वो अस्पताल में अगर भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने आपको अगर जरूरत होगी तो प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे। ज्यादा जरूरी होता है इसमें कि पानी का जो और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, जो आपके अंदर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम और वाटर, उसका जो इम्बैलेंस हो जाता है, एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, हर वायरल बीमारी एक तरह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये डॉक्टर आपको अच्छी तरह से उसमें सलाह दे पाएंगे। एक मलेरिया पे मैं बताना चाहूंगी कि जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा है और किसी को मलेरिया होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये आपके माध्यम से कि वाइवैक्स मलेरिया हो चाहे फैल्सिपेरम, उसमें फैल्सिपेरम में हमारी 4 दिन तक दवाई दी जाती है और वाइवैक्स में 14 दिन तक, तो जो 14 दिन दवाई दी जाती है वो जरूर लोगों को अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उसका जो मलेरिया का पैरासाइट है वो बॉडी में रह जाता है और थोड़े दिन बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी डाउन हुई तो दोबारा से मलेरिया हो जाता है, तो लोग अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, डॉक्टर की सलाह पे चलें तो बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगी कि जन भागीदारी, सफाई और प्रिवेंशन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी होने ही क्यों दें जब ये बीमारी इतने आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं आप अपने घर के आसपास सफाई रख के।
डॉक्टर साहब, अभी आपने हाथी पांव की बात की थी, तो क्या ये परेशानी जो है, जैसे आपने बताया 20-25 साल बाद उभर कर सामने आती है, तो क्या ये संभव है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित हो?
नहीं, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज में कोई भी डिजीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाती है, खाली जीका में ऐसा हो सकता है कि गर्भवती महिला अपने फीटस को ये जो बच्चा है गर्भ में उसको ट्रांसमिट करे, बाकी कोई बीमारी जो है एक फैमिली से ये हेरिडिटरी नहीं होती।
और राजेंद्र जी हिसार हरियाणा से हमारे साथ में है, राजेंद्र जी आपका सवाल पूछिए।
नमस्कार जी।
नमस्कार
साहब। कोई नमस्कार जी।
डॉक्टर
साहब से ये जानना था जी, पहला टेस्ट तो कौन सा है जो कि सभी बीमारियों का जो मलेरिया डेंगू के बारे में पता लग सके, हमें एक बार कोई हमारे ग्रुप का सदस्य जो हमारे 12 टेस्ट कराए गए, तो इसमें थोड़ा सा जो एक जानना था जो प्लेट गिरने से के बाद कई तरह के अपने घर में ही नुस्खे करने लगते हैं, तो क्या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इसके बारे में?
डॉक्टर पुनीत
देखिए, जो सबसे पहले जहां तक टेस्ट की बात है, कौन सा टेस्ट कराएं, जो ये बीमारी है वेक्टर जनित जो रोग हैं, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, तो सामान्यतः आपका जो ब्लड की जांच होती है उससे मालूम चल जाता है, लेकिन उसकी अलग अलग जांच है अलग बीमारी के लिए। और जहां आप बात कर रहे थे कि प्लेटलेट गिर जाती हैं, क्या घरेलू उपचार करें क्या करें, देखिए किसी भी बीमारी के लिए मेरा सुझाव यह है कि आप एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो पढ़ा योग्य चिकित्सक है, आप उनके पास जाएं, जो उनकी सलाह होगी उस हिसाब से करें। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरा बुखार पैरासिटामॉल की गोली से नहीं उतर रहा, लाओ मैं कोई दूसरी गोली खा लेता हूं, आइबुप्रोफेन खा लेता हूं, ब्रूफेन या जो भी नाम से आती हैं, तो हो सकता है कि आपका बुखार कम हो लेकिन आपको दूसरी चीज हो सकती है, आपको हो सकता है डेंगू हुआ हो जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस हैं और आपके सिर्फ इस दवाई खाने की वजह से ब्लीडिंग हो गई हो। तो एक तो चीज है कि घर में आप अपने आप उपचार ना लें, जो घर में आप उपचार ले सकते हैं सिर्फ इतना है कि अपने आपको हाइड्रेटेड रखें, ORS ले सकते हैं, जो अच्छा खान पान उसे कर सकते हैं, लेकिन जहां तक दवाइयों का सवाल है वो आप चिकित्सक की सलाह से लें, अपने आप कोई उपचार ना करें। मेरी किसी भी रोग के लिए यही सलाह रहेगी, चाहे वो डेंगू है चाहे मलेरिया है, और जितनी अवधि तक बताया गया है उतनी अवधि तक हमें उपचार लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा बुखार खत्म हो गया, जैसे अभी मैडम ने बताया कि वाइवैक्स मलेरिया है और हमें 3 दिन बाद बुखार नहीं आ रहा तो हम कहेंगे अब दवाई की क्या जरूरत, हम तो नहीं खाते हैं। तो जितनी अवधि के लिए बताया गया उतनी अवधि का उपचार करें, जो उपचार डॉक्टर के द्वारा बताया गया है उस उपचार को करें, घरेलू नुस्खे या जो अनक्वालिफाइड लोगों द्वारा नुस्खे दिए जाते हैं वो आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हर्षवर्धन पांडे हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। पांडे जी आपका प्रश्न पूछिए।
मेरा प्रश्न ये है कि मस्तिष्क ज्वर को मस्तिष्क ज्वर किस मच्छर के कटने से होता है, यदि हो जाए तो क्या उपचार करना चाहिए?
जी, तो ये क्यूलेक्स मच्छर है, ये बहुत ही कॉमन मच्छर है, हर जगह पाया जाता है, जहां पे भी नदी नाले होते हैं आपके घरों के आसपास, ड्रेन्स होती हैं, जहां रुकी हुई ड्रेन्स होती हैं, ये मच्छर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ये शाम के वक्त काटता है, और ये मच्छर शाम में और रात में दोनों वक्त काटता है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जैसे कुछ एरियाज हैं आसाम के हुए या यूपी के कुछ एरियाज हुए और जहां पे राइस फील्ड हैं या पैडी फील्ड हैं वहां पे भी इस मच्छर की बहुत ग्रोथ होती है, और इस मच्छर मैंने जैसे बताया इससे जो है वो बच्चों को भी बहुत ज्यादा उनमें क्षति भी होती है और कई सारी मौत भी हो सकती है। लेकिन हमारी कंट्री में अगेन हम कहेंगे कि हमने इसके ऊपर काफी कंट्रोल पाया है और उसका एक रीजन ये भी है कि इसके लिए एक वैक्सीन भी है। तो यही एक वेक्टर जनित रोग है जिसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, जो जैपनीज एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन है। तो जिन जिन स्टेट्स में और जिलों में ये बीमारी ज्यादा है वहां पर यह वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, और कहीं कहीं पर देखा गया है कि ये एडल्ट्स में जहां पर ज्यादा केसेस होते हैं या डेथ्स हो जाती हैं, तो फिर हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं ऐसे सारे केसेस को और एडल्ट वैक्सीनेशन भी करते हैं। लेकिन अगेन ये बीमारी भी उसी तरह से है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और इसमें इमीडिएटली जाना है, इसमें देर नहीं करनी है। अगर किसी को बच्चे को किसी तरह के दौरे आ रहे हैं या डिसओरियंटेड हो रहा है वो और तेज बुखार है और उस एरियाज में रहता है कि जहां पे जैपनीज एनकेफेलाइटिस के केसेस हैं, तो इसको बजाय किसी घरेलू डॉक्टर के पास या आसपास किसी के पास ले जाएं, इसको इमीडिएटली जिला अस्पताल के लेवल पे ले जाएं जहां पे कि इसकी अच्छे से केयर हो सकती है। और इसमें चांसेस होते हैं कि कई कई बार ये क्षति छोड़ जाता है तो डिसेबिलिटीज भी हो जाती हैं, तो इसलिए इसको दिखाना बहुत जरूरी है और जहां जहां पे ये होता है वहां वैक्सीन जरूर लगवाएं।
उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। लोकेंद्र जी प्रश्न पूछिए आप।
हाँ जी सर, नमस्कार सर।
नमस्कार
जी सर, मैं कल थोड़ा वायरल फीवर हो रहा था, हाथ पैर में अकड़न हो रही थी और थोड़ा बुखार भी रात को आया था, तो मैं जिला चिकित्सालय में हॉस्पिटल में दिखा के आया। दो तीन डोज लेने के बाद में बुखार तो चला गया, अभी इतना नहीं, पर शरीर में अकड़न और कमजोरी विकेश ज्यादा है सर
जी। डॉक्टर पुनीत
देखिए, आपने जिला चिकित्सालय में दिखाया है, वहां पे जो भी चिकित्सक है उन्होंने जो भी आपको चिकित्सा दी है आपके सिम्टम्स के आधार पे, तो जो भी आपको दवा बताई वो आप खाते रहिए। यहां से बिना मरीज को देखे हुए कोई दवा के लिए तो हम नहीं कह सकते, हम आपको सिर्फ इतना सुझाव दे सकते हैं कि चिकित्सक ने आपको जो दवा बताई है वो आप खाते रहें, साथ ही साथ आप अपना जो खाने पीने का ध्यान है उसको रखें। मोस्ट प्रॉब्ली आपके सिम्टम्स के हिसाब से लग रहा है कि शायद आपको वायरल फीवर हुआ होगा, तो अपना जो तरल पदार्थ है उसको थोड़ा सा आप अच्छी मात्रा में लेते रहें, साथ में जो दवाई बताइए जो प्रिकॉशंस बताएं वो आप करते रहें। अगर आप नहीं ठीक होते हैं तो आप कल या परसों में, यूजली डॉक्टर तीन दिन बाद बुलाते हैं, अगर सिम्टम्स ज्यादा खराब हो रहे हैं या कोई ऐसे आपको डेंजर साइन बताए हों, मान लीजिए आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, कहीं शरीर पर चकत्ते आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग होती है, तो उन सब चीजों में आपको तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अन्यथा अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो तीन दिन बाद चिकित्सक से दोबारा संपर्क करें और जो भी चिकित्सा बताते हैं उसको पूरा पालन करें।
डॉक्टर तनु, भी आपने तमाम बातों का जिक्र किया, जन भागीदारी की बात कही है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सबका सहयोग बहुत जरूरी होता है। अगर हम गवर्नमेंट के प्रयासों की बात करें तो किस तरह के प्रयास गवर्नमेंट करती है जिसमें लोगों की जन भागीदारी भी हो और वो अपनी जिम्मेदारी को समझ करके इन चीजों में आगे बढ़े।
जी, तो सबसे ज्यादा तो आपके ऊपर एक ओनस आता है, जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, तो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था, प्रिवेंशन में पहले क्या है, पर्सनल प्रोटेक्शन, कि जब मच्छर से बीमारियां हो रही हैं तो आप अपना ख्याल रखें कि पूरी बांह के कपड़े पहने, नीचे फुल ट्राउजर्स या पैंट्स पहन के रखें, अपने घर के आसपास सफाई रखें, जहां पे भी पानी कलेक्ट हो रहा है उसको खाली कर दें और उसको उल्टा करके रख दें ताकि बार बार उसमें पानी ना इकट्ठा हो, क्योंकि साफ पानी में ये मच्छर एडीज का पनपता है और ठहरे हुए गंदे पानी में मलेरिया का मच्छर पनपता है। तो कहीं पानी ना ठहरे, अगर पानी कहीं स्टोर कर रहे हैं तो उसको जरूर ढक के रखें, उसको खुला ना छोड़ें, टंकियों को कवर करके रखें, टाइम से टाइम अपने कूलर चेक करें और अपने आसपास भी अगर आपको कहीं गंदगी दिख रही है तो जो म्यूनिसपैलिटीज हैं उनको जाके कंप्लेन करें, वहां जाके आप सहयोग करें सरकार का जब आपके घर में वो आते हैं कूलर चेक करने, सारी चीज करने के लिए, और आसपास का भी ख्याल रखें। तो ये जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, इतना बड़ा देश है, सरकार पूरे सहयोग कर रही है, इनफैक्ट इस वक्त म्यूनिसपैलिटीज में जो डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर्स कहते हैं हमको, वो जगह जगह घूम रहे हैं और आपके कई लोगों के घरों में आए होंगे कूलर चेक करने, कई लोग सहयोग नहीं करते, देखने नहीं देते। बड़े बड़े घरों में देखा गया है, ये ऐसा ही नहीं है कि गांव में और शहरों की बात है, बड़े बड़े घरों में देखा गया है, क्योंकि ये पेरी डोमेस्टिक मच्छर है, छोटी छोटी चीजों में पनप जाता है, अगर कोई बड़ा पत्ता है उसमें भी पानी ठहर गया 8-10 दिन तक, उसमें भी ये मच्छर पनप जाएगा। तो देखिए कितनी जन भागीदारी की जरूरत है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, तो सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए।
डॉक्टर पुनीत, यदि किसी को शुरुआती तौर पर बुखार होता है तो क्या वो नॉर्मल पैरासिटामोल लेकर के अपना इलाज कर सकता है या तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सही दोनों में क्या होगा?
देखिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको बुखार हो रहा है आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है बुखार ज्यादा है और आपको उस कोई दवाई लेनी की है जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो पैरास्टामॉल के अलावा कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा यही होगा कि बुखार है, सिम्टम्स हैं, तो आप पहले डॉक्टर सलाह लें, वहां पर जांच करने के बाद देंगे, और हमेशा हमेशा के लिए याद रखें कि घर पे आपको या आपके किसी सदस्य को बुखार होता है तो पैरासिटामोल के अलावा कोई भी दवा अपने आप से ना दें, जब डॉक्टर सलाह दे तभी आप कोई दूसरी दवा का इस्तेमाल करें और सावधानी बरतें, यही कहना चाहूंगा, बैक्टीरियाजनित रोग से बचाव रखें।
और फिलहाल अभी निर्धारित समय समाप्ति की ओर है, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भाग लिया और आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डॉक्टर तनु और डॉक्टर पुनीत, हम आप दोनों का आभार व्यक्त करते हैं।
थैंक यू,
आपका भी बहुत बहुत आभार इतने अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन के लिए।
और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा पता है airnstalks@gmail.com और इस प्रोग्राम को आप दोबारा सुनने के लिए newsonair.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही निखिल को दीजिए इजाजत चलने की, अगले सप्ताह सोमवार को रात 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे एक नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।